پہ کہ مسجد میں یا گرودوارے میں یا ٹیمپل میں یا اور جو بھی چرچ میں کہیں پر آپ کمیونٹی کی کوئی سروسز آپ دیتے ہیں، لوگوں کی خدمات کرتے ہیں، نمبر ون اسٹیبلشمنٹ ہے. نمبر دو جو ہے وہ یہ کہ اگر کوئی آپ کے چھوٹے بچے ہیں یا آپ کے گرینڈ چلڈرن ہیں، نہ اگر آپ کے پوتا پوتی نہ نواسے وغیرہ نواسی وغیرہ ہیں وہ، یا کہ کوئی بھتیجا بھتیجی، تو وہ بھی بیسٹ انٹرسٹ آف چلڈرن جو ہے وہ بھی بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جو تھوڑے سے ایلڈرلی ہیں. اور جی ہاں، ایک اور چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے ملک میں، چاہے وہ انڈیا اور پاکستان میں ہو، آپ کے پاس ایسا کوئی مرض ہے جس کی خاطر خواہ وہاں پہ علاج نہیں ہے، تو نفسیاتی مرض بھی ہو سکتا ہے، ذہنی مرض بھی ہو سکتا ہے اور جسمانی بھی، کہ اس کا وہاں پہ کوئی خاطر خواہ علاج نہیں ہے، ریڈیلی اویلیبل میڈیکل سروسز نہیں ہے، ٹریٹمنٹ موجود نہیں ہے، تو یہ کچھ چیزیں اتنی امپورٹنٹ ہیں کہ اگر آپ کے پاس آپ کے کوئی بھی رشتے دار یا آپ خود، آپ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں آپ آپ کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے، کسی اور طریقے سے آپ اپلائی نہیں کر سکتے، تو اسس کرانے میں حرج نہیں ہے. اگر نہیں ہوگا تو ظاہر ہے میں لوگوں کو اکثر لوگوں کو بتاتی ہوں، سوری ابھی آپ کے پاس اسٹیبلشمنٹ انف نہیں ہے، آپ تھوڑا عرصہ اور رہیں کینیڈا میں، یا اور کوئی اور بھی چیز کی کمی ہو سکتی ہے، تو میں ان کو کہتی ہوں سوری یا میں آپ کا کیس نہیں لے سکتی کیونکہ ابھی اس میں تھوڑی کمی ہے. رائٹ. اور میں نے جو بیسٹ انٹرسٹ آف چلڈرن کا ذکر کیا، وہ بچے یہاں پر بھی ہو سکتے ہیں اور اوورسیز بھی ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی شخص ہے جو یہاں پہ 10-15 سال سے کام کر رہا ہے، اس کے پاس اسٹیٹس نہیں ہے، لیکن وہ پیسے بھیج رہا ہے گھر اپنے یا اپنے رشتے داروں کو، رشتے داروں کی سپورٹ کر رہا ہے، تو یہ بھی ایک اچھا ایک پہلو ہو سکتا ہے اور اسٹرانگ اور مضبوط ایک پوائنٹ ہو سکتا ہے. تو یہ ہیومینیٹیرین کمپیشنیٹ اپلیکیشن جو ہیں. میں ایک اور بات خاص کہنا چاہوں گی کہ انسائڈ کینیڈا کے لیے جو ہے وہ آفیسر کے پاس یہ ایک جورسڈکشن ہے، اور آپ سمجھ لیں کہ اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ ان کینیڈا اپلیکیشن ایجنسی کی، چاہے وہ پرمننٹ ریزیڈنسی کی ہو یا ورک پرمٹ کی اور کسی اور لحاظ سے بھی ہو، موسٹلی میں پرمننٹ ریزیڈنسی کی کرتی ہوں، تو ان کے لیے آفیسر کو مسٹ، ہی مسٹ، اس کو لازمی ہے کہ وہ اپلیکیشن کو کھولے، اس کو اسیس کرے اور اس پہ اپنا فیصلہ دے. اوورسیز ہیومینیٹیرین کمپیشنٹ جو اپلیکیشن ہوتی ہیں ان میں تھوڑا سا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آفیسر کے پاس ایک اختیار ہے کہ وہ چاہے تو وہ ان اپلیکیشن کو کھولے، چاہے تو بغیر کھولے ریٹرن کر دے کہ آپ کسی اور طریقے سے اپلائی کرو. تو یہ میں چاہ رہی تھی کہ آج ایک خلاصہ سا پیش کروں کہ ہیومینیٹیرین کمپیشنٹ اپلیکیشنز کے بارے میں. اور اس میں فیل ریفیوجی کلیمنٹ بھی آتے ہیں جنہوں نے ریفیوجی کلیم کیا اور وہ فیل ہو گئے، اور ان کے پاس انہوں نے اپیل بھی کر لی اور انہوں نے فیڈرل کورٹ میں بھی ریجیکشن ہو گیا، تو وہ سب لوگ بھی اس میں اس والی جو اپلیکیشن ہے ہیومینیٹیرین کمپیشنٹ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور ایک میں لوگوں کو تھوڑا سا جیسے انتباہ یا وارننگ یا ہیڈز اپ دوں گی کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو چاہے کوئی میرٹ نہیں بھی ہو پھر بھی کیس لے لیتے ہیں، وہ کیس نامنظور ہو جاتا ہے. اور میں اس طرح کے بہت کیسز کرتی ہوں جن کو میں کہتی ہوں اسکیلیٹن اپلیکیشن، یعنی بالکل بنیادی فارم بھر دیے، ایک دو چیزیں لگا دی، فیس لگا دی اور بس بھیج دیا اپلیکیشن کو. تو یہ اپلیکیشن بہت ڈیٹیلڈ ہے اور اس میں کافی محنت کرنی پڑتی ہے، ایفیڈیوٹ وغیرہ اس میں کام آتے ہیں اور لوگوں کے لیٹر، سپورٹنگ لیٹرز جہاں جہاں سے آپ لے سکتے ہیں، اپنے فرینڈ سے، رشتے داروں سے، کمیونٹی سے، چرچ سے، تو یہ کافی ڈیٹیلڈ ہے اور چیپ بھی نہیں ہے. اگر کوئی آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں آپ کا اتنے میں کر دوں گا اور آپ کو لگتا ہے یہ تو بہت ہی چیپ ہو رہا ہے کام، لوگ تو بہت زیادہ مانگ رہے ہیں اس کے، تو میک شیور کر لیں، ایک دو لوگوں سے مشورہ لے لیں، ضروری نہیں کہ مجھ سے، لیکن آپ ضرور اس چیز پر کوشش کیجئے گا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یا آپ کے کوئی رشتے دار ان چیزوں پر پورا کرتے ہیں.
ماشاء اللہ، پورا ڈیٹیل میں آپ کو بتایا ہے،
اتنی ڈیٹیل تو میں نہیں بتا سکی، ظاہر ہے مجھے پتا ہے کہ ابھی آپ کے 5 بجنے والے ہیں اور آپ مل کے دنیا کی سیر کرائیں گے.
آپ نے مگر آپ نے یہ بتاؤں گا کہ یہ جو جس طرح بتایا آپ نے، تو اگر بیچ میں کچھ کسی لوگوں کے پاس کچھ خلش بھی رہ گئی ہو، کیونکہ اپنے آپ کو تولتے ہیں نا ان چیزوں میں،
صحیح،
تو
صحیح.
اب اگر وہ ہوگا تو میں اور لوگوں سے کہوں گا کہ اب بقیہ کی باتیں جو ہیں آپ ڈیٹیل میں، انڈیویجلس کے کیسز انڈیویجل کیسز ہیں،
जी,
तो
बिल्कुल,
उसमें जो है आप, मैं नंबर दे देता हूँ यास्मीन तैयबी जी का, 9055130012 9055730013 9055130013 मेरे वन पे ना थोड़ा सा इंक लग गया था तो वो सेवन सेकेंड टाइम ओके चलो थर्ड टाइम में बताता हूँ मैं
9055130012
एक तरफ आप खुद भी बता दें आप
मैं नंबर भी बता देती हूँ 9055130012 एक और बात मैं कहना चाहूंगी मेरी अर्पा से भी बात हो रही थी और अर्पा भी और आप भी काफी लोगों को मेरी तरफ भेजते हैं रिफर करते हैं और कई उनमें लोग ऐसे होते हैं जो मुझसे अपने रिश्तेदारों के बारे में जो ओवरसीज हैं उनके बारे में स्किल्ड वर्कर कैटेगरी या स्टूडेंट के बारे में तो आजकल मैं उनको बता दूं कि आजकल मैं वो वाले केसेस इसलिए नहीं कर रही हूं कि ना उसका स्कोर बहुत हाई है 541 समथिंग का लास्ट टाइम और तो वो यहाँ के जो पढ़े हुए बच्चे हैं वो नहीं उस स्कोर पे पूरा उतर रहे तो वो मेरे लिए मैं लोगों को फिर साफ कह देती हूँ आई एम सो सॉरी कि आपके जो रिश्तेदार हैं इस वक्त उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा अनलेस उनके पास LMI है या जॉब ऑफर है या स्टूडेंट पे जो कैप लग गया है तो मैं शुरू में मना कर देती हूँ क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि मैं किसी ऐसा केस में लूँ कि जो मुझे पता है कि नहीं होने वाला है तो वो ईमानदारी की बात नहीं है तो अक्सर लोग बुरा मान जाते हैं कि आप तो आप ऐलान क्यों करते हैं नहीं तो मैं आपको भी बता रही हूँ कि आजकल मैंने थोड़ा सा होल्ड किया हुआ है स्किल्ड वर्कर पे स्टूडेंट्स पे ठीक है बाकी दूसरी चीजें चल रही हैं ये मुझे बताना तो जरूरी है
अगेन द नंबर इज 9055130012 बहुत शुक्रिया आपका
जी साहब यास्मीन तैयबी से की बात हुई 9055130012 उनका नंबर है एक गीत आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और फिर उसके बाद न्यूज की तरफ हम लेकर के चलेंगे आपको कोक स्टूडियो ने अपना एक और नया गीत अनाउंस कर दिया हम उसकी तरफ लेकर के जा रहे हैं आपको ये केक कोक स्टूडियो 15 का चौथा गाना इन्होंने रिलीज किया एक और गाना था ना मैंने वो है मगरों ले पीछा छड़ मैंने उसको मगरूला जब भी आज भी मैं पढ़ा तो मैंने मगरूला ही पढ़ा था बहरहाल इन्होंने चौथा गाना ये पश्तो का गाना है जिसको अफगानिस्तान में बहुत पजीराई मिली है यहां मिली है और हरकले खुशामदी है जिसका मतलब है खुशामदी और कहते हैं इस गीत को लिखने वाले भी 5 लोग हैं इसकी कॉम्पोजिशन बनाने वाले भी 5 लोग हैं और इनका पहला गाना 28 अप्रैल को रिलीज किया था ये जो हरकले है ये 5 मई को रिलीज किया गया आई होप यू विल लाइक इट लेट्स लिसन इट टुगेदर एंजॉय दिस ब्यूटीफुल पश्तो सॉन्ग
جون زما جون دستا بیل شانه دی هر کله زکاوم زپا دروازه سترگو تو را گئی مالخ کولا جب پسی سرو ما لکاله بانه سارما ور پسی لاردم خانه دزرگو صدا شو دخ کولا اس پلے راگ پا دنیا سوچ میں چی بیا دسی کل لے دمیو مقام تیرا سول لے دشا مٹی زب پی پیول لے کولی والی دی دسی کل لے دسی کل لے دسی کل لے سوچ میں چی بیا دسی کل لے دمیو مقام تیرا سول لے
Let me stay.
علاقائی زبان پشتو کا یہ گیت, اور جس کو نہ صرف کے پی کی میں بلکہ پشاور کی سائٹ پہ اور افغانستان میں بھی بہت پسند کیا جا رہا ہے. کوک اسٹوڈیو کی ایک اچھی پیشکش ہے. سیزن 15 میں انہوں نے سندھ کو بھی ٹچ کیا ہے, ابھی ان کو یہ ٹچ کیا ہے بلوچستان کو. اٹس اے گریٹ تھنگ. اینی ویز, بہت شکریہ ان تمام اسپانسرز کا جن کے توسط سے ہم یہ پروگرام آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں. یاد رکھیے گا 11 تاریخ کو گرینڈ اوپننگ ہے, 11th کو مدرس ڈے سے ایک دن پہلے. اٹ از سیٹرڈے, ہفتے کا دن ہے, ہفتے کا دن پائل بینکوٹ, پائل جیولرز کی گرینڈ اوپننگ ہے. یہ 2720 نارتھ پارک ڈرائیو پہ ہے, بالکل نارتھ پارک اور ایئرپورٹ نو فریلز کے ساتھ پلازا ہے, گوڈی کھمن پلازا وہاں پہ. اچھا, یہاں پہ جو لوگ اس دن شاپنگ کریں گے ان کا ایک الگ ڈرا میں نام ہوگا, جس میں ایک گولڈ رنگ دی جا رہی ہے. ہم وہ میسج بھی آپ کے ساتھ ریلے کریں گے. اور وہ لوگ جو نہیں بھی شاپنگ کریں گے مگر آپ آئیے گرینڈ اوپننگ کو, وی ول سیلیبریٹ اٹ ٹوگیدر. چنا بھٹورا ہوگا, سموسے ہوں گے, ہم سموسے میں چنے ڈال کے اپنی مرضی کا ساتھ چٹنی ڈال کے کھانا کھائیں گے. او منہ میں پانی آ گیا. مگر اسلم بھائی نے یہ جو پائل جیولرز ہے اس کو شروع, بہت خوبصورت ہے, یہ فیس کرتی ہے, اس کی بیک سائڈ بالکل ایئرپورٹ روڈ پہ آتی ہے. ایئرپورٹ اور نارتھ پارک کا انٹرسیکشن ہے, ایئرپورٹ نارتھ پارک, آپ سمجھیے گا نارتھ ویسٹ نکر, نارتھ ویسٹ جس رستے جہاں پہ آپ کو نظر آئے گا نا نو فرل, بس وہیں پہ اسی پلازا میں پائل جیولرز اس کا نام ہے. اچھا, وہ لوگ جنہوں نے نہیں بھی کوئی شاپنگ کرنی تو پھر صاحب سونے کے کوکے میں ڈرا ڈلے گا. آپ کو 10 سونے کے کوکے دینے جا رہے ہیں, تو یو نو چلو آج سے ہی پیسے جمع کرنے شروع کرتے ہیں. میں نے تو ضرور کوئی چیز خریدنی ہے, آپ بھی ضرور خریدیے گا. پائل جیولرز 9057907878.
کلر فل چیزیں ہیں نا وہ, اس کو کیا کہتے ہیں وہ اسٹور,
جڑاؤ
کے کام کی چیز,
جڑاؤ زیورات. بھائی بھائی دیکھیے وہ جو رنگ ہے وہ بھی بڑی خوبصورت ہے, ڈائمنڈ جیولری ہے نا, 24-22 کیرٹ کے زیورات ہیں, دبئی, سنگاپور, انڈیا, پاکستان سے. اور وہ جو آپ ڈائمنڈ کی رنگ دیکھ رہے ہیں, وہ جو تاج بنا ہوا نظر آ رہا ہے نا, بیسیکلی اٹس اے ڈائمنڈ رنگ. اور ایون اگر آپ کے ہاں شادی ہے اور لڑکے کے لیے, دلہا کے لیے, اور پلیٹینم رنگس بھی ہیں, ڈائمنڈ رنگس بھی ہیں, تو آپ نے آنا کہاں ہے پائل جیولرز پہ, 2720 نارتھ پارک برامپٹن میں, یہ ہے ایئرپورٹ اینڈ نارتھ پارک کا انٹرسیکشن.
11 بجے صبح,
ہاں 11 تاریخ کو صبح 11 بجے 11 تاریخ کو, تو مگر مہینہ 5 مئی کا مہینہ, تو آپ نے آنا ہے. ہمارے آج کے پروگرام کو ویلج ٹیسٹ نے بھی تعاون دیا, ویلج ٹیسٹ آج کھلا ہے. جیتیے گا سب سے بڑا بفے حلال کی, جب میں بات کرتی ہوں نا اسپیشلی حلال کی, تو 2294 لیک شور کے اوپر. کیا آپ مجھے روک کیوں رہے ہیں؟ آپ مجھے کسی بات پہ روک رہے تھے, کس بات پہ روک رہے تھے؟
نہیں, میں نے کہا کہ 5:15 ہونے,
میرے بیٹے کو نہیں میں اچھی لگتی. تو ہر بات آپ مجھے چھپ کے اشارہ کر رہے تھے, کیوں کر رہے تھے؟
نہیں, آپ مائک پہ ہیں تو اس مائک پہ یہ کام چلتا ہی رہتا ہے.
نہیں نہیں, آپ نے کچھ اور کہا تھا, تو صاحب کھانا کھانا ہے نا, تو پہنچیے کہاں پہ, ویلج ٹیسٹ پہ, 2294 لیک شور, دیٹ از ان اوکویل. مگر ہمارا مسز آگا میں بھی سینٹرلی بھی لوکیٹڈ ہے, 4141 ڈکسی روڈ پہ, ویلج ٹیسٹ 905-232-3663. شازیہ جی از ریڈی فار ہر نیوز اینڈ شی از لیونگ فار ٹمارو, کیونکہ انہوں نے 99 پورے کر لیے, 99 پورے کر لیے. بائی دا وے, ٹورنٹو میں چوہے بہت بڑھ گئے ہیں. پتا چلا ہے کہ کسی کی گاڑی میں, میں تصویریں لے کے آؤں گی, ان کے پاس گاڑیاں تھیں دو, ان کے ہسبینڈ دبئی میں تھے اور سعودی عربیہ میں تھے, تو انہوں نے ایک ٹیسلا خریدی تھی نئی گاڑی, ایک گاڑی گراج میں بند تھی, بڑا گھر, اتنا بڑا گھر ان کا, اتنا بڑا 3 گاڑیوں کا گراج, تو ایک گاڑی ان کی گراج میں بند تھی ٹیسلا, اور ایک گاڑی وہ چلاتی رہی. ابھی جب گرمیاں شروع ہوئیں اور جب انہوں نے اپنی گاڑی کھولی تو گاڑی کی ساری تاریں کٹی ہوئی ہیں, گاڑی کی سیٹوں کو کھا لیا گیا ہے, گاڑی میں چوہا آ گیا. ٹھیک ہے, اور چوہا وہ آپ کو پتا ہے, جب یہ گاڑی ٹیسلا کے پاس گئی تو اس کی ریپیئر ظاہر ہے کچھ انشورنس کور کرے گی فار شیور. ٹوٹل کاسٹ کتنی آئی ہوگی؟
ہزاروں میں.
اپروکسیمیٹلی کتنی؟ 44,000. تو آج وہ ہماری سروت کا گھر بھی اتنا بڑا ہے, آپ دیکھیں ماشاءاللہ محل کے جیسا اس کا گھر ہے, مطلب گاڑیاں بھی ایک سے ایک ہیں. تو اس کی گاڑی میں چوہا آ گیا.
سروت کی بھی؟
ہاں.
اوہو,
اور آپ سوچئے گا ایک بندہ گاڑی اور وہ بھی عورت گاڑی چلا رہی ہے اور چوہا پھدک کے آگے آ جائے تو کیا ہوگا. تو اب آج اس نے اپنی وہ جو چوہا ٹریپر ہے نا وہ لگایا ہوا تھا. تو گھروں میں کوشش کریں کہ اگر آپ اپنے گھر میں ہیں, خرچہ بہت ہو جاتا ہے پھر ایسا علیجا کو پیسے بنیں گے, اس سے پہلے آپ احتیاط کیجئے گا, اپنے گھروں کے دروازوں کو بند رکھیں کیونکہ چوہوں کو پناہ چاہیے ہوگی. کبھی اگر آپ کا دروازہ ان اٹینڈیڈ کھلا رہا تو یہ چوہے پھر گھر میں آتے ہیں اور پھر یہ جگہ بناتے ہیں, اور پھر ان میں بچے دینے کی صلاحیت بہت کمال کی ہے. کیا کمال کی فرٹیلائزیشن اللہ تعالی فرٹیلٹی ان کی رکھی, فرٹیلائزیشن نہیں فرٹیلٹی ان کی رکھی ہوئی اللہ نے. تو اسٹے سیف. شازیہ کے 99 پورے ہو گئے, سو شی از لیونگ ٹمارو. She will be here in any minute. Stay tuned. کون کہتا ہے کہ انشورنس کمپنیاں وقت پر کلیم ادا نہیں کرتی؟ ایک اور مسکنسپشن کہ لائف کریٹیکل النس, ڈسیبلٹی یا پھر ٹریول انشورنس بہت مہنگی ہیں. نہیں صاحب, آپ ایک بار انشور پرو کے فضل ودود سے بات کیجئے گا, 28 سال کا انڈر رائٹنگ کا تجربہ ہے. لائف کریٹیکل النس, ڈسیبلٹی, ٹریول انشورنس, ہر انشورنس کے معاملے کے لیے فضل ودود آف انشور پرو. 905-607-5000.
اجیت سنتے ہو؟
اب کہہ بھی دو.
کتنی دفعہ تو کہہ چکی ہوں.
مگر کب؟
اب کچھ کہنا وہنا نہیں ہے, بس لے کے جانا پڑے گا آپ کو ہیئر میکس ہیئرنگ سینٹر پر.
الٹیمیٹ ہیئرنگ سولوشن, نو ابلیگیشن, کمپلیمنٹری ہیئرنگ ٹیسٹ.
ہیئر میکس ہیئرنگ سینٹر, کال شیراز 416-792-8792.
رنگنگ, بزنگ, ہسنگ, ٹائم ٹو گیٹ یور ہیئرنگ چیک.
Buy one hearing aid, get one 15% off. 416-792-8792. Ultimate Hearing Solution, 416-792-8792.
قرض سے نجات کے لیے ایک ہی نام, محمد صدیقی, آل دا سولوشن, پرسکون زندگی اور کریڈٹرز کی کال سے چھٹکارا.
محمد صدیق آل ڈیٹ سولوشن بینکرپسی, انسالوینسی, کنسالیڈیشن کرتے ہیں اپ ٹو 80%. محمد صدیق آپ کے لیے کام کرتے ہیں. پرسکون زندگی, اچھی صحت اور لمبی عمر کی ضامن. اپنی زندگی کو پرسکون کرنے کے لیے, قرضوں سے پاک کرنے کے لیے رابطہ کیجیے محمد صدیق. 416-671-0577.
کہیں مارگیج نہیں مل رہی, جھٹ پٹ مارگیج دلا کے ساری مشکل کر دیں گے آسان. 11 سال سے زیادہ تجربہ اور ایک بھروسہ مند نام. ہر قسم کی ریزیڈینشیل یا کمرشل مارگیج کے لیے مارگیج الائنس کی جیسمین پرمار سے رابطہ کریں. ری فائنینسنگ آپشنز, رینیول آپشنز, مارگیج ڈیفیکلٹیز, ڈاؤن پیمنٹ ایشوز, سیلف امپلائڈ, پرائیویٹ فنڈز, سیکنڈ مارگیج کے لیے کانٹیکٹ کریں موسٹ ٹرسٹ وردی جیسمین پرمار سے. نمبر ٹو کال 647-923-5659. لائسنس نمبر 10530.
ماما لنچ ریڈی ہے؟ بہت بھوک لگی ہے.
یا مام, میں نے تو بریکفاسٹ بھی نہیں کیا.
بائی دا وے, کیا بنایا ہے؟
جو ٹی وی دیکھتے ہوئے کھائے گا اس کے لیے کریلے, اور جو موبائل ہاتھ میں لے کر کھائے گا اس کے لیے ٹنڈے, اور جو تمیز سے سب کے ساتھ مل کر کھائے گا اس کے لیے بریانی.
یہی ہے مینار باسمتی رائس کا مزہ, لمبا کھلتا خوشبودار دانا, پر جب بھی کھانا مل کر کھانا. مینار, ہر دانے میں پیار.
ٹیلی ٹائم الیکٹرانکس, ایل ای ڈیز اور ہوم اپلائنسز کی ہاٹسٹ اور برانڈیڈ رینج کے ساتھ 0% فائنانس, گارنٹی اور لوئسٹ پرائسز اور فری ڈیلیوری ان جی ٹی اے. تو انتظار کیسا, ابھی وزٹ کریں ٹیلی ٹائم برامپٹن, 280 ردرفورڈ روڈ, یا اسپرنگ ڈیل اسکوئر شاپنگ سینٹر, یا ایٹوبیکو 1770 ایلبین روڈ, یا 9909 مارکم روڈ. مزید تفصیلات کے لیے کال کریں 905-455-1666. ٹیلی ٹائم الیکٹرانکس.
समय नाजरी वेलकम बैक अगेन एंड सब 5:20 और 52 सेकंड हमारी घड़ियों में हो चुके हैं एंड अब चलेंगे आपको लेके न्यूज की जाने वो न्यूज में क्या है ये तो अभी पता लगेगा आपको डोंट यू गो अवे डोंट वरी अबाउट इट. दिस सेगमेंट ऑफ द न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय ओपन माइक कैफे. ओपन माइक कैफे नासिर शाह साहब कहते हैं साहब आप पहुंच जाइए 1310 डंडास स्ट्रीट डंडास एंड डिक्सी के कॉर्नर पर एंड मिसेस सागा और पाकिस्तान के लजीज खाने खाने हो तो भाई आपको एक ही जगह जाना है ओपन माइक कैफे. ओपन माइक कैफे फोन नंबर 416-526-6800 और सब बटाला हलाल मीट बटाला हलाल मीट बटाला हलाल सुपर मार्केट यहां पहुंच जाइए आप आपको मिलेगा 200 मार्कम रोड मार्कम एंड एग्लिंटन के कॉर्नर पर और सब सेल लगी हुई है यहां पर बहुत सारा पैसा सेव कर सकते हैं आप बटाला सुपर मार्केट पर 416-264-3111 इनका फोन नंबर है. इन सारी चीजों को एंजॉय करने के लिए आपके दांत अच्छे होने चाहिए आप दांतों के लिए डेंटिस्ट्री और मिसागा आपके लिए चलते हैं डॉक्टर नाजिया रहमान यहां पर होती हैं एंड इनका कहना है कि फैमिली ब्रेसेस कॉस्मेटिक एंड इम्प्लांट डेंटिस्ट्री क्लोज टू योर होम न्यू एंड इमरजेंसी पेशेंट्स आर ऑलवेज वेलकम. दो लोकेशन दोनों लोकेशन ब्रैमटन के इलाके में डॉक्टर नाजिया रहमान टेलीफोन नंबर 9058721100 इनका फोन नंबर है. और साहब हम जैसे आपको बता रहे हैं कि ग्रैंड ओपनिंग होने जा रही है पायल ज्वेलर्स की. पायल ज्वेलर्स की हम तमाम वहां पर होंगे 11 तारीख को 11 बजे दिस कमिंग 11th मई और इस दिन हम सब पहुंचेंगे वहां पर. रिबन कटेगी एंड खाने पीने की काफी चीजें होंगी. टेंट लगा होगा उस टेंट के अंदर आप बैठे होंगे वहां पर आपकी बेगमाज जो है वो अंदर शॉपिंग कर रही होंगी. अपना क्रेडिट कार्ड उनको दे दीजिए बस बाकी को दिल टेक केयर ऑफ इट नो नॉट टू वरी अबाउट इट. 2720 नॉर्थ पार्क ड्राइव इन ब्रैम्पटन अगेन नॉर्थ पार्क एंड एयरपोर्ट रोड के एकदम नुक्कड़ पे आपको मिलेगा ग्रैंड ओपनिंग पायल ज्वेलर्स की. फोन नंबर है 9057907879. और साहब चलिए अब ये चलते हैं आपको चॉइस नो चॉइस ये चलते हैं आपको कहां पर शाजिया मलिक की जाने. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कैसी हैं आप.
वालेकुम अस्सलाम मजीद भाई मैं देख रही हूं दिन ब दिन आप जो है ना अल्फाबजी के साथ रह रहे के ना बहुत खराब होते जा रहे हैं बहुत अच्छा, बदल गए हैं.
इट्स टू लेट नाउ
इट्स टू लेट लेकिन आपके जो है ना केस में आपके लिए अच्छा यही है अगर आप हमारा चाहते हैं हमारा प्यार आपके साथ बना रहे आप अच्छे रहे आप बदले मत खराब मत हो. हालांकि बेचारा आप जैसा एक जो मासूम था ना उसको ये भी बड़ी शिकायत थी उसकी जब शादी हुई ना बीवी के साथ है तो वो बार बार बीवी कहती थी भाई तुम बदल जाओ तुम कितने जो है वो अजीब आदमी हो. तो फिर अब 22 साल के बाद उसने कहा ओ यार तुम कितने बदल जाओ कहता है ले 22 साल मुझे कहती रही है बदल जाओ अब मैं बदल गया हूं तो कहती है कितना बदल गया है. लेकिन आपको मैं कह रही हूं आप जो है ना मत बदलो प्लीज.
अच्छा
हाँ आप मत बदलो इसलिए कि आप बहुत ज्यादा दिन ब दिन खराब होते जा रहे हो अरफाज भाजी की कंपनी में रह रहे के ना.
अच्छा
हाँ तो हमारा मेरा आमिर का जीशान का सरवत का किसी का प्यार आपके साथ नहीं रहेगा आप देख लो आप वोट कर सकते हैं ये
नहीं
आज से कट्टी कर दे मारफा बाजी से
नहीं नहीं कट्टी करने कट्टी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता.
तो फिर हमारे साथ कट्टी है
आप लोगों का प्यार छूट जाए वो सही है.
अच्छा
मैं उनसे कट्टी अफोर्ड नहीं कर सकता.
क्यों क्यों
अब 23-24 साल हो गए अब तो अब कहाँ जाने हमने.
तो आप जो है आप पॉलिटिशियन बन जाओ बदलिहाज हो जाओ आप आंखें बदल लो उनसे. आप बोलो नहीं मेरा प्यार अब उनके साथ बढ़ गया बस.
अच्छा
ऐसे ही तो होते हैं पॉलिटिशियन, ऐसे ही तो होते हैं। देखो जरा एक स्किन बदल जाती है उनकी बाकायदा सही तरह से है, वो मैं तुम्हें लाहौर की गलियों पे घसीटूंगा, वो मैं तुम्हें जो है लड़काना की जेलों में सड़ाऊंगा, उसके बाद देखो कैसे लवी टवी होके बैठे हुए थे।
प्यार मोहब्बत हो गया।
हाँ प्यार मोहब्बत हो गया। सीखो मजद भाई, सीखो कुछ, सीखो आप कोई पॉलिटिशियन।
ना हम पॉलिटिशियन बन सकते हैं।
लिफाफे तो बड़े आते हैं आपको वैसे, लिफाफे तो वो कहाँ से आ रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं,
वो अगर बता दिया तो मेरे लिफाफे कम हो जाएंगे ना।
देखा ना मैंने आपको कहा ना, बहुत खराब होते जा रहे हैं आपा बाजी के साथ रहे।
हो रहे हैं क्या, हो गए।
हो गए। अच्छा जी, अच्छा जनाब, ये जो है आपको पता ही है, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय फ्यू स्पॉन्सर्स। उसमें जो सबसे ऊपर है वो है लीजाज कॉस्मेटिक्स। तो आपने लीजाज कॉस्मेटिक्स पे जाना है जी, पूरे साल का आपने थोक के हिसाब से चीजें लेकर आ जानी है, क्योंकि 80% ऑफ दे रहे हैं वो। तो अब जो है फ्यू डेज रह गए हैं, अब आपके अब मई से थर्ड से सिक्स और अब मई 10th से 12th तक जो है इनकी सेल रह गई है। बहुत जबरदस्त ब्रांडेड आइटम्स होते हैं, चाहे परफ्यूम्स हैं, चाहे इनके पास जूते हैं, पर्स हैं और भी बेशुमार चीजें हैं, हाउस होल्ड के बहुत सारे आइटम्स होते हैं। तो आपने जाना है 135 कॉमर्स वैली ड्राइव ईस्ट मार्कम के अंदर, आप जरूर जाएं और आप जो है एंजॉय का मजा लें, ठीक है जनाब। इसके अलावा चांदनी विक्टोरिया बैंक्वेट हॉल, आपको पता ही है 1400 लोगों की यहां पे कैपेसिटी है, उसमें ढाई बंदा तो आप बड़े आसानी से बुला सकते हैं, मैं मजद भाई और आमिर, तो बुला लें प्लीज आप जरूर, क्योंकि आप यहां का खाना खाने के लिए मरे जा रहे हैं। तो आप जो है अपनी खुद की फैमिली के भी इवेंट्स कर सकते हैं और अपने कॉर्पोरेट इवेंट्स भी कर सकते हैं। आप इनको कॉल कर लें ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए, इनका नंबर है 6479653823। एंड जनाब मलिक लॉ ऑफिस, आपके कोई भी मसाइल हैं, खासतौर पर अगर आप खुश नहीं है किसी के साथ रहने में है, तो आप जरूर इनको कॉल कर लें। ये जो है मलिक लॉ ऑफिस, इनकी बड़ी जबरदस्त सुविधाएं हैं। मलिक अतीक मलिक मोहम्मद अतीक मलिक साहब होते हैं, इनका नंबर है 9052914455। ठीक है जी। अच्छा जनाब, स्यापे जो हैं हमारे कनाडा और इंडिया के बिल्कुल चलते ही चले जा रहे हैं, वो वैसे तो कहते हैं चेंज इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, लेकिन ये इधर कुछ चेंज आ नहीं रही है अपने जो है ना, ये स्पाइस जो है ये इसको
गलत टच डालती है।
हाँ। तो ये इनकी लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। आपको पता ही है कि अभी हमने आपको बताया था थोड़े दिन पहले कि ये जो अभी वीकेंड से पहले हमने आपको बताया था कि तीन बंदे पकड़े हैं कैनेडा ने, जिसमें उन्होंने कहा जी कि निजर साहब की डेथ के अंदर वो लोग इन्वॉल्व थे। अब जाहिर है ये सारी की सारी जो डिटेल्स थी ये कनाडा की तरफ से। आज जो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उनके जो मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, उन्होंने कहा है जी कि कनाडा, ये बहुत बड़ी उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा है कि हमारी सबसे बड़ी हेडेक और प्रॉब्लम जो है वो कनाडा है। तो मैं पूछना चाहती थी पायन इसका मतलब है पाकिस्तान का नंबर टू है। पाकिस्तान नंबर टू पे, क्योंकि आज एस जयशंकर ने कहा हमारा सबसे बड़ा दुनिया में प्रॉब्लम जो है वो कनाडा है। व्हेन इट कम्स टू सिख सेपरेटिज्म, हमने इनको बड़ी दफा कहा है कि आप जो है वेलकम कर रहे हो ये क्रिमिनल्स को, ये सारे के सारे क्रिमिनल्स जो है हमारी वांटेड लिस्ट के ऊपर हैं, हम आपको कह रहे हैं। और उन्होंने कहा जी कि ये जो है गैंग लैंड बनता जा रहा है ये जो कनाडा है इन लोगों के लिए, और इनके सबके जो ताल्लुकात हैं ये ऑर्गेनाइज क्राइम के साथ हैं, ये जो पंजाब से हैं, और कनाडा इनको हाथ फैला फैला के वेलकम जो है वो कर रहा है। और वो कह रहे जी आप इनको वीजे दे रहे हैं, आप इनको रहने की यहां पे जगह दे रहे हैं, तो ये जो है बिल्कुल ठीक नहीं है। आज एस जयशंकर साहब असल में एक जो है खिताब कर रहे थे भुवनेश्वर के अंदर, एक फोरम ऑफ इंटेलेक्चुअल्स था उसके अंदर, और उन्होंने कहा कि सिर्फ लिबरल पार्टी ही नहीं बल्कि कनाडा की दूसरी पार्टीज भी जो हैं उन्होंने इनको एक्सट्रीमिज्म सेपरेटिज्म और ये जो वायलेंस क्रिएट करते हैं उसको फ्री स्पीच के नाम के अंडर लिजिटिमेसी इन्होंने दी हुई है। और ये जो है हमेशा ये लोग जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, इंडिया के जो डिप्लोमेट्स हैं, हमारी एम्बेसी है, हमारे एम्बेसी का जो स्टाफ है, तो मैं कनाडा से पूछना चाहता हूं कि अगर हम आपके डिप्लोमेट्स, आपके फ्लैग, आपकी एम्बेसी के खिलाफ वो सब कुछ करें जो आपके मुल्क में इंडिया के डिप्लोमेट्स, एम्बेसी और फ्लैग के साथ हो रहा है, तो आपको कैसा लगेगा। आपको पता ही है कि ट्रूडो साहब ने एक्यूज किया था, और फिर अभी जो आरसीएमपी ने पूरी जो प्रोब बिठाई थी उसके अंदर ये जो सिख लीडर थे हरदीप सिंह निजर साहब जिनको के मार दिया गया था सरी के अंदर, तो उसके अंदर इन्होंने 3 इंडियंस को पकड़ा था और वो बातें सारी फिर से लोगों को याद आ गई कि जिस वक्त ट्रूडो साहब ने मोदी जी के पास बोला था कि हमारे पास जो है क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है कि अलेजली इंडियन गवर्नमेंट का रोल है इन लोगों को हमारी सॉइल के ऊपर मारने के लिए, खासतौर पे निजर साहब के सिलसिले में, और उस वक्त भी जो मियां थी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया की, उसने ना किया था। आज भी जैसे शंकर साहब ने कहा और मियां का भी जो एक स्टेटमेंट आया था उसमें उन्होंने कहा जी कि ये एक नेक्सस चल रहा है खालिस्तानी सेपरेटिस्ट का और ड्रग सिंडिकेट्स और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, और जो है ये इसको बिल्कुल कनाडा बिल्कुल रोकने की कोशिश नहीं कर रही। कनाडा ने कहा था जी कि इंडिया ने अभी तक हमें कोई सबूत नहीं दिए हैं कि वो सब लोग जो कनाडा के अंदर रहते हैं उनका कोई क्रिमिनल जो है बैकग्राउंड है, तो एज अ रिजल्ट कनाडा के क्रिमिनल कोड के अंडर या हमारे लीगल सिस्टम के अंदर एक बंदे जो के पीसफुली रह रहे हैं उनके खिलाफ हम एक्शन नहीं ले सकते हैं। एस जयशंकर ने साहब ने कहा जी कि ये 6 सेपरेटिस्ट हैं जो कि खालिस्तान बनाना चाहते हैं और इनको जो है आपने बहुत जगह दी है। जब उनसे पूछा गया, यहां पे सवाल किया गया कि सिमिलर किस्म के एलिगेशंस जो थे वो यूएसए की तरफ से भी आए थे, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं, तो एस जयशंकर साहब ने बहुत क्लियरली कहा कि यूएसए इज नॉट अ प्रॉब्लम, कैनेडा इज इंडियाज बिगेस्ट प्रॉब्लम। ठीक है जी, पायन ये वो बात है, यानी कि ये देखो ना, ये वही बात है जो चाइना और पाकिस्तान के साथ है, ये वैसे ही कनाडा और अमेरिका, कनाडा बेचारा लिस्सा मुल्क है तो उसमें वो कहते हैं जी कुस्के मारेंगे और अमेरिका जो उसके साथ कहते हैं जी नहीं तुम्हारे साथ प्यार मोहब्बत से बात करेंगे, जैसे कहते हैं हमारे रीजन में चाइना के साथ प्यार मोहब्बत से बात करेंगे और पाकिस्तान में घुस के मारेंगे, तो जो लिस्सा है ना उसके ऊपर जो है ना जरा ज्यादा जोर होता है। बहरहाल जी, अभी तक जो मेलानी जोली है हमारी फॉरन अफेयर्स मिनिस्टर, वो उनकी ऑफिस से इसके ऊपर कोई भी जवाब नहीं आया है एस जयशंकर साहब के इन सारी बातों के ऊपर। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के जो मिनिस्टर हैं डोमिनिक लेब्लॉ, वो आज टेबल कर रहे हैं लेजिस्लेशन और हाउ टू काउंटर फॉरेन इंटरफेरेंस इन कनाडा। ये जो बिल है इसका नाम है एन एक्ट रिस्पेक्टिंग काउंटरिंग फॉरेन इंटरफेरेंस। इसके अंदर जो फेडरल ऑफिशियल्स हैं उनको, उनके साथ ये टेक्निकल ब्रीफिंग कर रहे हैं और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही है कुछ ऐसा डेटाबेस जिसके के अंदर वो वर्क एजेंट्स जो कि फॉरेन गवर्नमेंट्स के लिए काम कर रहे हैं कनाडा में उनको कैसे ट्रेस किया जा रहा है। और बड़े अरसे से फेडरल गवर्नमेंट को कहा जा रहा था कि आप एक सिस्टम डिवाइस करें और एक डेटाबेस क्रिएट करें ऑन द सेम लाइन्स जो कि ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के अंदर भी है। लास्ट फॉल में भी जो हाउस एथिक्स कमेटी थी उसने अपनी एक 82 पेज रिपोर्ट निकाली थी और उसमें उन्होंने कोई तकरीबन 2 डजन के करीब रिकमेंडेशंस की थी कि किस तरह से एक रजिस्ट्री जो है ये फॉरेन एजेंट्स की प्रिपेयर की जा सकती है। और उन्होंने ट्रूडो गवर्नमेंट को कहा था कि आप ये जो पब्लिक इंक्वायरी बिठाई है आपने, आप उसके रिकमेंडेशंस का वेट मत करो, आप खुद ही से अपना एक जो फेडरल गवर्नमेंट है एक टूल्स जो है कोई इंस्टॉल कर लें जिससे कि कनाडा की डेमोक्रेसी को जो ग्लोबल थ्रेट्स हैं उसको आप लोग मेजर कर सको। तो उसी सिलसिले का आज ये जो लेजिस्लेशन है ये टेबल किया जा रहा है। कनाडा की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है कनाडा सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विसेज सीसेस जिसको हम बोलते हैं, उसने बड़ा वार्न किया है कि इसराइल हमास की जो वॉर चल रही है उसकी वजह से कनाडा के अंदर जो ये वायलेंट जो रेटरिक है वो बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। ये इनकी डिस्कशन हुई थी कुछ अर्सा पहले सीसेस वालों की फेडरल पब्लिक सेफ्टी डिपार्टमेंट एंड मुस्लिम एंड ज्यूइश लीडर्स जो थे उनके साथ हेट क्राइम्स के ऊपर, क्योंकि आपको पता ही है कि मस्जिदों के अंदर जो है वो पोर्क के हेड्स फेंके गए थे और जो सिनागॉग्स थे उनके बाहर जो ग्रेफिटी की गई थी। तो उसी सिलसिले में ये इंटेलिजेंस एजेंसीज इन सबके साथ मुलाकातें कर रही थी, तो वो कह रहे थे जी कि कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं हमें पता चला है कि उनका इंटेंट है टू मोबिलाइज टू वायलेंस और इसीलिए हमारा काम है एज एन एजेंसी सीसेस का कहना था कि मॉनिटर एंड आइडेंटिफाई करें ये जो थ्रेट्स हैं और गवर्नमेंट को अलर्ट करते रहें। इसी सिलसिले में वो कहते हैं जी कि हम अपनी टॉक्स मुस्लिम्स और ज्यू कम्युनिटीज के साथ कंटिन्यू रखेंगे, हम उनके कंसर्न सुनेंगे और उनको भी बताएंगे कि उनको क्या करना चाहिए अपनी कम्युनिटीज में। डायरेक्टर डेविड वाइनॉल्ट जो है उनकी मुलाकातें जो हैं वो हुई हैं फेडरल एनवॉयज के साथ भी और उन्होंने उनको बताया है कि ये जो एंटी सेमेटिक और ये जो इस्लामोफोबिक जो चीजें हैं बहुत बढ़ती चली जा रही हैं। वो कहते हैं जी कि हमारी बहुत सारी मीटिंग मुस्लिम और अरब लीडर्स के साथ भी हुई हैं लेकिन ये जो मिडल ईस्ट की जो वॉर है इसका इम्पैक्ट काफी जो मुसलमान और पैलेस्टीनियंस कनाडा में रह रहे हैं उनके ऊपर आ सकता है। तो ये जो सीसिस की आज रिपोर्ट है इसके ऊपर जनाब जरा गौर करने की जरूरत है। बहुत सारे जो नेस्ले के वर्कर्स हैं उन्होंने अब स्ट्राइक कॉल की है ट्रोनो के अंदर, और उनको जो एक टेंटेटिव डील दी गई थी वो उन्होंने रिजेक्ट कर दी है। और यूनिफर का कहना है कि 461 मेंबर्स जो कि काम कर रहे थे एज मशीन ऑपरेटर्स, बार पैकर्स, शिपर्स, रिसीवर्स, जनरल लेबरर्स एंड स्किल्ड ट्रेड्स, यहां पे जो ट्रोनो का नेस्ले प्लांट है उसके ऊपर ये स्ट्राइक के ऊपर जा रहे हैं। ये बनाते थे किट कैट।
मैं बताऊं आपको कि ये जो है हर शख्स का ना कोई फेवरेट चॉकलेट होता है, है ना। आपका भी हो सकता है किट कैट हो, एरो हो, कॉफी क्रिस्प हो,
चॉकलेट बार्स
एंड स्मार्टीज, इसमें से कोई आपका है?
हाँ मेरा है ना, मेरा किट कैट एंड स्मार्टीज।
देयर यू गो। मगर नेस्ले वालों ने कहा है कि भाई
असर नहीं पड़ेगा सप्लाई पे।
हाँ अगर ये लंबी चली आए तो फिर है, मगर फॉर द टाइम बीइंग उनके पास इतना स्टॉक है कि वो स्टोर्स को देते रहेंगे।
वो कहते हैं जी कि यूनियन जो है उसने कहा है जी कि हमारा पेंशन प्लान एक तो आप इम्प्रूव करें, और फिर ये जो 2 ईयर फ्रीज आपने कर दिया है कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट का, उसको आप खत्म करें। नेस्ले ने कहा जी कि हमने तो वर्कर्स को एक बड़ी अच्छी डील दी थी लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन फिर भी हम यूनियन के साथ बात करते रहेंगे ताकि वर्कर्स को वापस बुलाएं। वर्कर्स कहते हैं जी जब तक हमारी ये चीजें सॉल्व नहीं होंगी हम वापस काम पे नहीं आएंगे, तो हुण पता चलेगा फेयर की होएगा। ठीक है जी। ऑन्टारियो गवर्नमेंट ने आज कहा जी कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जो औरतें काम करती हैं उनके लिए हमको जो मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स हैं वो देने की जरूरत है। उसकी वजह ये है कि वो कहते हैं जी कि औरतें जो हैं वो इस ट्रेड में इसीलिए नहीं जाती हैं और वो पीछे रह रही हैं क्योंकि जो एक तो जो अभी रिसेंटली जो एक सर्वे किया था और जो अभी जो बाइडन कह रही हूं डकफोर्ड साहब ने जो अभी कंस्ट्रक्शन साइट्स पे अभी दौरे भी किए थे उसमें कहा गया था कि जी यहां पे लॉन्ग ड्यूटी आवर्स हैं और बाथरूम्स नहीं हैं, उसकी वजह से बहुत सारी औरतें जो हैं यहां पे वर्क प्लेस में नहीं आती हैं, सैनिटेशन नहीं है और बहुत सी मुश्किलें हैं। उसके ऊपर आज इन्होंने ऑन्टेरियो गवर्नमेंट ने कहा जी कि हम अब जल्दी ही एक ये जो बिल लेकर आ रहे हैं उसमें वो कह रहे हैं जी कि इसमें बहुत सारे जो वर्कर्स के इश्यूज हैं उनको हम टैकल करेंगे। वर्क प्लेस हैरेसमेंट है और ये जो है मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स कैसे दिए जा सकते हैं, औरतों को और कैसे सपोर्ट दी जा सकती है, ये स्किल ट्रेड जो है इनको ज्यादा औरतों के लिए एक्सेसिबल कैसे किया जा सकता है। ये जो अभी 2022 ऑन्टेरियो बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन ट्रेड्स वुमन सर्वे हुआ था उसमें 50% औरतों ने कहा था जी कि कंस्ट्रक्शन साइट पे वॉशरूम्स नहीं होते हैं, तो उसकी वजह से ज्यादातर वो इस सेक्टर से जो है पीछे रहती हैं। लेकिन जो लेबर मिनिस्टर हैं ऑन्टेरियो के डेविड पचीनी उन्होंने कहा जी कि नहीं हम जो है अब ऐसी हम कुछ साइट्स जो हैं वो फाइंड आउट कर रहे हैं जहां पे कि ये कंस्ट्रक्शन चल रही है कि उसके ऊपर हम कहते हैं कि ये सारी चीजें मौजूद होनी चाहिए तो कि औरतों जो है औरतों को जिनको हम पीछे छोड़ रहे हैं सेक्टर में से वो ज्यादा से ज्यादा इस सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व हुएं। तो अब ये बिल आएगा तो डिटेल्स और हमें पता चलेंगी। और जनाब खुशखबरी तोड़े वास्ते कनाडा पोस्ट ने अपने जो पोस्टेज जो प्राइसेस हैं उनको बढ़ा दिया है। दिस इज थर्ड टाइम सिंस 2019 एज अ रिजल्ट रेट्स हैव रिजन बाय 7 सेंट्स पर स्टैम्प टू 99 सेंट्स फ्रॉम 92 सेंट्स जो कि आप सेल किए जाएंगे बुकलेट्स, कॉयल्स और पेन में से। और इसके अलावा जो डोमेस्टिक स्टैम्प्स हैं उनकी भी प्राइस 1.07 से इंक्रीज करके $1.15 उन्होंने कर दिया है। वो कहते हैं जी कि इसका इम्पैक्ट दूसरे जो प्राइसेज हैं जो कि जैसे आप शिपिंग करते हैं इंटरनेशनल या कि यूएस के अंदर, इवन जो आप डोमेस्टिक रजिस्ट्रेशन करते हैं मेल सर्विसेज पे उनके भी प्राइसेज जो हैं ऊपर जाएंगे। 2019 में इन्होंने 5 सेंट से प्राइसेज को ऊपर किया था और 2020 में अनदर 2 सेंट इन्होंने ऊपर किया था। तो अब ये जो है जी इनका थर्ड इंक्रीज है। बेल्जियम के जो प्राइम मिनिस्टर हैं डिक्रू उन्होंने आज बहुत बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा जी कि मैं यूरोपियन कंट्रीज को कह रहा हूं कि ट्रेड सैंक्शंस लगाएं अगेंस्ट कौन, सोचें अगेंस्ट इसराइल। वो कहते हैं जी कि यूरोपियन यूनियन जो है उनको देखना चाहिए कि इसराइल जो है वो इंटरनेशनल जो लॉज है उनको फॉलो नहीं कर रहा है। हम अंडर जो पॉलिसी जो इनके साथ ईयू पॉलिसी जिसके अंडर हम इनके साथ काम कर रहे थे मुझे लग रहा है कि अलेजली ये वायलेट कर रहे हैं। उन्होंने आज यूरोपियन यूनियन के फॉरेन पॉलिसी चीफ जोसेफ बोरेल को भी कहा है कि आप देखो कि क्या इसराइल ये वायलेट कर रहा है हमारी डील की जो सारी सैंक्शन डील की जो डिटेल्स हैं उनको, और अगर कर रहा है तो उनके ऊपर एक सैंक्शन लगाने की जरूरत है। अर्लियर ऑल्सो इन्होंने कहा था कि हमको इसराइल के ऊपर सैंक्शन लगाने चाहिए क्योंकि इसने 35,000 से ज्यादा जो है लोगों की डेथ्स जिसमें के इंक्लूडेड है 10,000 चिल्ड्रन उसकी जो है डेथ्स का ये जो है जिम्मेदार है। और उन्होंने आज यूरोपियन यूनियन को कहा कि آپ صرف یہ مت دیکھو کہ یہ پیلسٹینینز کو مار رہے ہیں، کل یہ لوگ ہی مڑ کے آپ کی طرف یا دنیا بھی مڑ کے آپ کی طرف دیکھے گی اور آپ کو کہے گی کہ جس وقت یہ لوگ پیلسٹینینز کو مار رہے تھے اس وقت آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا، آپ صرف دیکھ رہے تھے. تو اس لیے ریجن کے اندر اور ایسکلیشن آ جائے گی، اور اسی لیے یورپین کنٹریز جو ہے ان کو اب ان کی طرف دیکھ کے اور ان کے اوپر سینکشنز لگانے کی ضرورت ہے. آپ کو پتا ہی ہے کہ بیلجیم کے پاس اس وقت ای یو کاؤنسل کی روٹیٹنگ پریزیڈنسی ہے، تو اس لیے آج انہوں نے بھی یہ سارے بیان جو ہیں وہ دیے ہیں. جرمنی کے اندر جی تھاؤزنڈ آف پروٹیسٹرز جو تھے وہ آج دیکھے گئے سڑکوں کے اوپر ڈریسڈن اور برلن کے جو برانڈنبرگ گیٹ ہے اس کے پاس. اس کی وجہ یہ ہے جی کہ یہ پروٹیسٹ کر رہے تھے رائٹ ونگ ایکسٹریمزم کی وجہ سے، کیونکہ جو فرائیڈے کو یہاں پہ ایک سوشل ڈیموکریٹ کے جو لا میکر تھے میتھیاز ایک، وہ اپنے پوسٹرز لگا رہے تھے جب ان کے اوپر جو ہے اسالٹ کیا گیا ڈریسڈن میں. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ جون میں یورپین یونین کے پارلیمنٹ کے الیکشنز آنے والے ہیں، تو ان کو نہ صرف یہ جو ہے گھیرا بلکہ انہوں نے مارا پیٹا اور اتنی برے طریقے سے مارا کہ ان کو سرجری کے لیے لے کے جانا پڑا اور وہ جو ہیں ہاسپٹل میں ہیں. اس کے لیے جو ہے آج بہت سارے لوگ جو ہیں جرمنی کی اسٹریٹس پر تھے اور انہوں نے کہا جی کہ یہ لا میکرز کے اگینسٹ وائلنس جو ہے بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. اس کے اندر جو ہے کہا جا رہا ہے کہ چار میلز جو تھے ینگ میلز جن کی ایج 17 سے 20 ایئرس کی تھی وہ اس کے اندر شامل تھے. ان میں سے پھر جو ایک 17 سال کا بچہ تھا اس نے تو اپنے آپ کو اتھارٹیز کو ٹرن اپ کیا، اور یہ سارے جو لوگ تھے یہ انہوں نے ڈارک کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے. تو آج جرمنی میں یہ کہا گیا کہ جی اگر جو ہے یہ رائٹ ونگ کے جو ایکسٹریمسٹ ہیں یہ اگر پولیٹیشنز کو بھی نہیں چھوڑ رہے تو عام لوگ جو ہیں ان کو کیسے چھوڑیں گے. ایسا ہے. حماس کی ابھی جو لیٹسٹ خبر آئی ہے جی اس کے مطابق جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایک جو ٹروس کی ڈیل ہے اس کو لینے کے لیے تیار ہیں، اور یہ جو پرزنر سواپ ہونا چاہتا ہے یہ وہ ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ سارے جو بہت سارے انٹیلیجنس کے آفیشلز جو ہیں یہ کائرو کے اندر مل رہے ہیں. ایجپٹ کے انٹیلیجنس چیف عباس کمیل ہیں، اور سی آئی اے کے جو ڈائریکٹر ہیں ولیم برنز آئے ہوئے ہیں، اور قطر کے جو پرائم منسٹر ہیں، اور پھر ایجپشن آفیشلز ہیں، یہ سارے کے سارے کائرو کے اندر اب بات کر رہے ہیں. یہ سارے کا سارا جو مشن ہے اس کے اندر مین مدعا یہی ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر ٹروس لایا جائے، اور ایک پروپوزل دیا گیا تھا جو ہم نے آپ کو فرائیڈے کو بتایا تھا کہ لایا گیا ہے، جس پہ کہ حماس نے کہا تھا کہ ہم اس کے اوپر بات کریں گے. سی آئی کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ولیم برنز جو ہیں وہ خاص طور پہ قطر پہ پہنچے تھے، اور انہوں نے کہا تھا جی کہ میں پرائم منسٹر کے ساتھ بات کروں گا، کیونکہ یہ جو میٹنگ ہے اسٹیک ہولڈرز کی یہ شاید کلیپس ہو سکتی ہے. اس کے بیچ میں اسرائیلی ڈیفینس منسٹر جو ہیں یوب گیلنڈ، انہوں نے کہا تھا کہ ہم گازا کا آفینسو جو ہے وہ رفا کے اندر لے کے جائیں گے. اس کے علاوہ نتنیاہو صاحب نے بھی کہا، جس کے اوپر بائیڈن صاحب نے نتنیاہو صاحب کے ساتھ بات کی، اور انہوں نے کہا جی کہ رفا کے اندر آپ انٹر نہ ہوں، لیکن ابھی جو رپورٹس آئی ہیں کہ انہوں نے ابھی اپنی اسٹرائکس جو ہیں رفا کے اوپر شروع کر دی ہیں. اس کے بیچ میں یونائیٹڈ نیشنز کی جو ایجنسی ہے فار پیلسٹینین ریفیوجیز اس نے بھی کہا ہے کہ ہم یہاں سے نہیں نکل رہے ہیں، کیونکہ جو تھا اسرائیل اس نے آرڈر دیا ہے کہ 1 ملین جو 100,000 جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ ان علاقوں سے چھوڑ کے چلے جائیں، لیکن جو یو این ایجنسی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ یہاں پہ 1 ملین ایجپشنز جو ہیں ریفیوجیز یہاں پہ شیلٹر میں لیے ہوئے ہیں ہم نے، تو ہم جو ہے یہ جگہ چھوڑ کے نہیں جا سکتے ہیں. البتہ جو چیف اسماعیل ہانیہ ہیں انہوں نے آلریڈی قطر کے پرائم منسٹر اور ایجپٹ کے انٹیلیجنس چیف کو کہا ہے کہ ہم تیار ہیں یہ ان کی ڈیل ایکسپٹ کرنے کے لیے، لیکن اب ڈیل کے بعد یہ رفا کا آفینسو روکیں گے یا آگے جو ہے یہ ٹروس کو کنٹینیو کریں گے اس کے بارے میں ابھی تک جو ہے کوئی ڈیٹیلز نہیں آئی ہیں. اور جناب آپ نے اس ہفتے کے شروع میں کیا سنا تھا، یعنی کہ لاسٹ ویک کے شروع میں کیا سنا تھا کہ شاید بینک آف کینیڈا جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے ریٹ کٹس کی طرف جا سکتے ہیں، لیکن جناب ریٹ کٹس کی طرف کیسے جائیں گے، کیونکہ بلومبرگ کی آج کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق سعودی عربیہ جو ہے اس نے اپنا ریز کر دیا ہے پرائس آف فلیگ شپ کروڈ آئل ٹو ایشیا فار 3rd consecutive month، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم آئل مارکیٹ کو ٹائٹن کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہاں پہ جو ہے گلوبل سرپلس نہ آئے. یہاں کا جو سب سے بڑا اسٹیٹ رن آئل کمپنی ہے ارامکو سعودی عربیہ کی، اس نے کہا جی کہ جو جون کے آفیشل سیلنگ پرائس آئے گی لائٹ کروڈ کی فار کنزیومرز ان ایشیا اس کو ہم انکریز کر رہے ہیں 90 سینٹ سے، تو اب یہ 2.90 US डॉलर्स पर बैरल होगी, विच इज अबव ओमान दुबई बेंचमार्क। दुबई ओमान का जो बेंचमार्क है वो जरा उन्होंने थोड़ा सा नीचे रखा हुआ है। उन्होंने कहा जी कि ओपेक जो है अब पंप कर रहा है 26.81 मिलियन बैरल्स पर डे, जो कि इसने किया था अप्रैल में, विच इज अबाउट 50,000 पर डे, लेस देन द प्रीवियस मंथ। लेकिन इराक और यूएई जो हैं वो सऊदी अरेबिया की इस बात के साथ सहमति नहीं कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि हमको ग्लोबल सरप्लस जो है उसको रोकने की जरूरत है। इराक और यूएई जो हैं वो ज्यादा पंप कर रहे हैं 1,000 बैरल्स पर डे, विच इज अबव द एग्रीड लिमिट्स। तो भरल जी ऑयल की प्राइसेस ऊपर जाएंगी क्योंकि सऊदी अरेबिया ने किया, तो ओपेक को भी करना पड़ेगा और ओपेक प्लस भी करेगा क्योंकि उसके अंदर रशिया का भी फायदा है। तो आपको पता ही है कि पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर जाती हैं तो फिर सारा कुछ जो है एक्सपेंसिव होता है। दुनिया के मुस्लिम मुल्कों में जी फ्लड्स और लैंडस्लाइडिंग और जो है वो हो रही है, उसकी वजह से काफी डेथ्स हो रही हैं। ये जो लैंडस्लाइडिंग और फ्लड्स इंडोनेशिया के साउथ सलावेसी प्रोविंस के अंदर हुआ है, उसके अंदर 15 लोगों की डेथ्स हो गई हैं। 42 जो हाउसेज हैं वो सारे बह के चले गए और जो है रोड्स डैमेज हैं। इसके अलावा जो है 100 के करीब जो घर हैं वो सीरियसली डैमेज हैं। 115 लोगों को यहां पे इवैक्यूएट करके मस्जिदों में या उनके अगर कोई रिलेटिव्स के होम्स हैं वहां पे भेजा गया है। 1300 लोग जो हैं वो अभी तक जो है बुरे तरीके से अफेक्ट हुए हैं, जिनको के रिलीफ दी जा रही है। इसके साथ साथ सदर्न ब्राजील जो है उसके अंदर भी फ्लड्स और लैंडस्लाइडिंग की वजह से 56 लोगों की डेथ हुई है। हजारों ही घर जो हैं वो बह गए हैं और बहुत ही बुरी हालत में है। सैकड़ों ही घर, ब्रिज और रोड्स जो हैं वो टूट गए हैं और वो कह रहे हैं कि जी ब्राजील के अंदर 80 ईयर्स में इससे बैड जो हैं फ्लड्स नहीं आए हैं। इसके अलावा 265 म्यूनिसपैलिटीज जो हैं उसके अंदर 24,000 लोग जो हैं ब्राजील में अफेक्ट हुए हैं। 350,000 जो हैं उनकी जो प्रॉपर्टी है काफी बुरे तरीके से डैमेज हुई है। इसके साथ साथ केन्या के अंदर भी ये जो फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स आई हैं उसके अंदर 200 लोगों की डेथ हो गई है। हजारों ही डिस्प्लेस्ड हैं। तकरीबन 2000 के स्कूल जो हैं करीब स्कूल हैं उनको डिस्ट्रॉय हो गए हैं और बाकी सब स्कूलों को केन्या में शट डाउन कर दिया गया है। तो जो क्लाइमेट चेंज है जनाब उसके काफी बुरे असर नजर आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की जो फ्लैगशिप एयरलाइन है कंटास वो अब एग्री कर गई है कि वो 79 मिलियन US डॉलर्स जो है वो एक लॉ सूट सेटलमेंट में देगी क्योंकि उसने टिकट सेल किए जबकि जो इनकी फ्लाइट्स थी वो कैंसल थी, जिसके के ऊपर लोगों के लिए बहुत मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ा। 66 मिलियन जो है फाइन्स देंगे और इसके अलावा वो कॉम्पेंसेशन देंगे ऑफ $13 मिलियन टू ओवर 86,000 कस्टमर्स, जबकि इन्होंने एडवर्टाइज किया था कि थाउजेंड्स ऑफ सीट्स हैं जबकि वो सिर्फ घोस्ट सीट्स थी इन 2021-22। कंतास के ग्रुप के जो सीईओ हैं वनेसा हडसन, उनका कहना है कि ये जो सेटलमेंट है दिस इज सब्जेक्ट टू कोर्ट अप्रूवल और अगर कोर्ट ने अप्रूव किया तो हम ये सारा कुछ देने को तैयार हैं, जो कि ये शो करेगा कि हमारे नेशनल करियर जो है उसके अंदर अभी भी लोगों का कॉन्फिडेंस है। तो पयन फिर आपने पहली दफा ही क्यों गलत काम किया, पहले ही आप जो है वो ठीक काम कर लेते। तो बहरहाल जी ऐसे अच्छा जनाब हमने लास्ट वीक आपको बताया था कि प्रेसिडेंट शी साहब जो है चाइना के वो पहुंच सकते हैं फ्रांस, वो अब पहुंच गए हैं फ्रांस में एंड दिस इज हिज फर्स्ट ट्रिप टू यूरोप इन 5 ईयर्स। उनका पहला पड़ाव जो है जाहिर है वो फ्रांस ही है, जहां पे के वो मुलाकातें कर रहे हैं फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रों साहब के साथ। उसके बाद इनकी मुलाकातें जो हैं यूरोपियन यूनियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन डर लेयन उनके साथ भी होंगी। यहां से फिर वो ट्रैवल करके जाएंगे सर्बिया और हंगरी, ये वो दो कंट्रीज हैं जिन्होंने अभी तक भी रशिया के साथ यूरोपियन यूनियन के अंदर दोस्तियां रखी हुई हैं। हालांकि इनकी वॉर जब से शुरू हुई हुई है फरवरी 2022 से, बहुत सारे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्होंने रशिया के साथ अपने जो है टाइज सिवियर किए हुए हैं। बीजिंग और पेरिस जो है वो 60 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज मना रहे हैं क्योंकि फ्रांस जो था पहला वेस्टर्न कंट्री था जिसने कि फॉर्मरी चाइना को रिकग्नाइज किया था ऑन January 27, 1964। फ्रांस ने कहा जी कि ये यूक्रेन की वॉर जो है हमारी टॉक्स के अंदर प्रोमिनेंट रहेगी लेकिन हमारा जो फोकस है इंटरनेशनल क्राइसिस और खासतौर पर जो मिडिल ईस्ट के अंदर सिचुएशन है उसके ऊपर रहेगा। मैक्रों साहब ने कहा जी कि एक उन्होंने इंटरव्यू दिया है द इकोनॉमिस्ट को, उन्होंने कहा जी कि मैं शी साहब को जरूर बताऊंगा कि हमको यूरोप को अपने आप को सेफ गार्ड करने की जरूरत है फ्रॉम चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स एंड इंडस्ट्रीज और एक कॉम्पिटिशन जो है वो फेयर होना चाहिए। इसके साथ साथ वो अपनी वाइफ के साथ होस्ट करेंगे शी साहब और उनकी वाइफ जो है पेंग लियुआन के साथ एक स्टेट बैंक्वेट में। और जो उर्सुला वॉन डर लेयन है उन्होंने कहा जी कि उनकी भी जो बातें शी साहब के साथ होंगी उसके अंदर वो बात करेंगी कि ये जो चाइना का कॉम्पिटिशन है दुनिया के साथ ये फेयर होना चाहिए। ਬਈ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਸਤੀ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਸਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੈਂਜੀ? ਤੋ ਬਹਰਾਲ ਜੀ ਦੇਖੇਂਗੇ ਅਬ ਕਿਆ ਬਾਤਚੀਤ ਇਨਕੀ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ, ਦਿਸ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਜ਼ ਬੀਂਗ ਬ੍ਰਾਟ ਟੂ ਯੂ ਬਾਏ ਓਨਟਾਰੀਓਜ਼ ਲਾਰਜੈਸਟ ਹਲਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਫੇ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਲੇਜ ਟੇਸਟ ਹੈ। ਵਿਲੇਜ ਟੇਸਟ ਵਾਲੇ ਕਹਤੇ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਦੋ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਹੈਂ, ਇੱਕ 4141 ਡਿਕਸੀ ਰੋਡ ਮਿਸਿਸ ਸਾਗਾ ਮੇਂ, ਇਸਕਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 9052323663। ਅਗਰ ਆਪ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈਂ ਆਪ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈਂ। ਇਸਕੇ ਇਲਾਵਾ 2294 ਲੇਕਸ਼ੋਰ ਰੋਡ ਵੈਸਟ ਓਕਵਿਲ ਮੇਂ ਹੈ, ਇਨਕਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 9052262294। ਔਰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਓਪਨਿੰਗ ਹੋਣੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਪਾਇਲ ਜੁਵਲਰਸ ਕੀ, ਤੋ ਆਪ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਵਹਾਂ ਪੇ ਜਾਏ ਮੇ 11th ਕੋ ਐਟ 11 AM। ਦੇ ਆਰ ਲੋਕੇਟਡ ਐਟ 2720 ਨਾਰਥ ਪਾਰਕ ਡਰਾਈਵ, ਯੂਨਿਟ 42, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮੇਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕੇ ਲਈ ਆਪ ਇਨਕੋ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ ਐਟ 9057907879। ਔਰ ਜਨਾਬ ਰਾਜਾ ਤੇ ਬਾਸ਼ਾ ਜੀ ਕਹਤੇ ਹੈ ਰਾਈਟ ਕਵਰੇਜ ਕੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਓ, ਆਲ ਸਟੇਟ ਕੇ ਸਾਥ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਢੇਰੋਂ ਆਪਕੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਏਂਗੇ। ਤੋ ਆਪ ਰਾਜਾ ਜੀ ਕੇ ਪਾਸ ਯਾ ਤੋ ਜਾ ਵੀ ਸਕਤੇ ਹੈ ਯਾ ਉਨਕੋ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ ਜਾਣੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ। ਤੋ ਇਨਕਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 6472903773। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਜੋ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਜੈਸੇ ਕਿਸ ਦਿਨ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਂ ਬੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਬੜਾ ਹੈਪਨਿੰਗ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਤੋ ਵੋ ਜੋ ਹੈ ਬੜੀ ਉਸਕੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। PTI ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਆਪ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਵੋ ਵਾਪਸ ਜੋ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਅਗਰ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਜੋ ਹਾਰੀ ਥੀ ਉਨਕੋ ਇਹ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੜਾ ਫੇਵਰੇਬਲ ਵਰਡਿਕਟ ਦਿਆ ਹੈ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਵਾਪਸ ਪਾਵਰ ਮੇਂ ਆ ਸਕਤੀ ਹੈ। ਹੁਆ ਯੇ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਵਰਡਿਕਟ ਦਿਆ ਥਾ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਕੋ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਆ ਹੈ। ਵੋ ਜੋ ਜਜਮੈਂਟ ਥੀ ਵੋ ਦੇ ਰਹੇ ਥੇ ਸੁੰਨੀ ਇਤਿਹਾਦ ਕਾਉਂਸਲ ਕੀ ਜੋ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੀਟਸ ਥੀ ਉਸਕੇ ਉਪਰ। ਆਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੇਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਮੇਂ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਜੋ PTI ਕੇ ਲੀਡਰ ਅਸਦ ਕੈਸਰ ਹੈ, ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਪਖਤੂਨਖਾ ਮਿਲੀ ਅਵਾਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੀਫ ਮਹਿਮੂਦ ਖਾਨ ਅਟਕਜ਼ਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ PTI ਵਾਪਸ ਪਾਵਰ ਮੇਂ ਆ ਸਕਤੀ ਹੈ। PTI ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਥਾ April 2022 ਕੋ ਇਨ ਨੋ ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਮੂਵ, ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾ ਜੋ 3-ਮੈਂਬਰ ਬੈਂਚ ਹੈ ਹੈਡਡ ਬਾਏ ਜਸਟਿਸ ਮਨਸੂਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਆ ਥਾ PTI ਬੈਕਡ SIC ਪਲੀ ਅਗੇਂਸਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੀ ਜੋ ਰੂਲਿੰਗ ਥੀ ਜਿਸਮੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕੋ ਡਿਪਰਾਈਵ ਕੀਆ ਗਿਆ ਥਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟ ਕੋਟਾ ਸੇ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਇਟਸ ਸਟਰੈਂਥ ਇਨ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਕੈਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੇ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਔਰ ਆਪਕਾ ਸਭਸੇ ਬੜਾ ਇਸਕਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਵੀਟ ਕਾ ਸਕੈਮ ਜੋ ਇਨਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸਕੇ ਅੰਦਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਚੈਕਰ ਕੋ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਕਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁਆ ਹੈ, ਤੋ ਉਸਕੇ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋ ਆਪ ਬਾਤ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਹਮ ਫਾਰਮਰਸ ਕੇ ਸਾਥ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਔਰ ਫਾਰਮਰਸ ਜੋ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਵਾਈਡ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸਟੇਜ ਕਰਨੇ ਲਗੇ ਹੈ May 10th ਸੇ, ਹਮ ਉਨਕਾ ਸਾਥ ਦੇਂਗੇ। ਇਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਰ ਵੋ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕਿ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਇਨਕੰਬੈਂਟ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਹੈ, ਹਮ ਉਸਕਾ ਸਾਥ ਦੇਂਗੇ। ਔਰ ਵੋ ਕਹਤੇ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਤੋ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕੇ ਤੋ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਇਲੀਗਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਆਪਣੀ ਜੋ ਗੈਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਕਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਉਸਕੋ ਆਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇਗਾ। ਇਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਕੀ ਜੋ 900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਥੀ ਵੋ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਔਰ ਅਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜੋ 1900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀ ਜੋ ਟੋਟਲ ਇਹ ਜੋ ਚਾਰ ਬਹਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਇਹ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਜੋ ਕਿ ਆਏਗੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਔਰ ਸਿੰਧ ਮੇਂ, ਉਸਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਕੀ ਜੋ ਅਬ ਹੈ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਬਣਾਨੀ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਤ ਕਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਜ ਇਰਾਨੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਜਨਰਲ ਟੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਸਨ ਨੂਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਹੈ ਉਸਕੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕਦਰ ਕਰਤਾ ਹੂੰ, ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋ ਆਪਣਾ ਕਾਮ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਂਗੇ। ਇਹ ਮੁਆਹਦਾ ਜੋ ਥਾ ਤਕਰੀਬਨ 2014 ਕੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੁਆ ਥਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਕਤ ਸੇ ਇਹ ਸਟਾਲਡ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੌਕੋ ਪੇ US ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਸਕਤੇ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਰੋਕਾ ਨਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਨੂਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹੈ ਮੀਟ ਪ੍ਰੈਸ ਸੈਸ਼ਨ ਮੇਂ ਕਰਾਚੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਮੇਂ ਜਰਨਲਿਸਟੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ, ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਅਭੀ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਇਬਰਾਹਿਮ ਰੈਸੀ ਕਾ ਵੀ ਜੋ ਯਹਾਂ ਪੇ ਦੌਰਾ ਥਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਾ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਲੇਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੋ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੇ। ਔਰ ਇਸ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਖਾਜਾ ਆਸਿਫ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਥਾ ਕਿ ਹਮ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੋ ਅਬ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੇਂ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੇਂਗੇ ਯਾ ਨਹੀਂ। ਅਬ ਇਸਕੇ ਉਪਰ ਕਿਤਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਸਕਤਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੇ ਵੋ ਤੋ ਅਬ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨੋਂ ਮੇਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਤੋ ਯਹੀ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਜੋ ਹੈ ਇਸਕੋ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਆ ਜਾਏਗਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਜ਼ੀ ਫੈਜ਼ ਈਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹੈ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਕਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਕਾ ਜੋ ਸਿਟ ਇਨ ਕੇਸ ਥਾ ਇਸ ਮੇਂ ਜੋ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਬੜੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਅਪੋਇੰਟਿੰਗ ਹੈ, ਔਰ ਮੁਝੇ ਤੋ ਯਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਬ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀ ਗਈ ਥੀ ਤੋ ਉਸਮੇਂ ਕੁਝ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੋ ਥੀ ਅੱਜ ਉਸਨੇ ਇਹ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਕੀ ਥੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਆਫ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ जब ये इंक्वायरी कमीशन की ने अपनी रिपोर्ट दी थी, 3-member bench हेडेड बाय सीजेपी, इसके अंदर थे बाकी 2 जस्टिसेज इरफान सादात और नईम अख्तर आवान साहब, तो उसके ऊपर ये जो है ये कमेंट दे रहे थे। आपको पता ही है कि ये कमीशन बनाया गया था 2017 का जो सिट हुआ था फैसला फैजाबाद में, जो कि फॉर्मर टीएलपी के चीफ खादिम हुसैन रिजवी ने किया था, जिसमें के लोगों ने कहा था कि जी लोगों को बहुत ज्यादा उसमें परेशानी हुई थी इनके सिटिंग की वजह से, और एक सिटीजन जो है ये केस लेकर आया था, तो कमीशन बिठाया गया था। लेकिन उस कमीशन ने 3 चिट दे दी थी उस वक्त के स्पाई मास्टर जो है फैज हमीद और फॉर्मर पंजाब रेंजर्स के डीजी मेजर जनरल रिटायर अजहर नवीद हयात को। और आज जब हियरिंग शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान ने कहा कि वो पढ़ रहे थे, असल में वो इंक्वायरी रिपोर्ट जो है कमीशन की रिपोर्ट वो पढ़ रहे थे, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मुझे बड़ी हैरत है कि ये सेंटेंसेस जो हैं ये कैसे लिखे हैं और इनकी कंस्ट्रक्शन किसने की है, क्योंकि इतने गलत तरीके से लिखा गया है। इसमें यह तो बताने की कोशिश ही नहीं की जा रही है कि इसमें वायलेंस किसने की थी और वायलेशन किसने की थी, तो उसका बारे में तो पता होना चाहिए। तो मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं, ये अजीबोगरीब किस्म की एक रिपोर्ट है जिसमें पता ही नहीं चल रहा है कि वायलेशन किसने की थी, किसको पनिशमेंट करना है, ये सवाल कोई भी जो है इसके अंदर नहीं दिए गए। तो जनाब बड़ा उन्होंने गुस्से का आज जो है वो निजहार किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उन्होंने कहा जी कि सेंटेंस और इक्विटल इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जो है वो अलग-अलग की जाएगी इन साइफर केस, और एक केस के अंदर दोनों का फैसला जो है वो नहीं दिया जा सकता। 2-member इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बेंच कंप्राइजिंग चीफ जस्टिस आमिर महमूद एंड जस्टिस मैंगल मियां गुल औरंगजेब जो थे वो ये पिटीशन हियर कर रहे थे, और उन्होंने कहा जी कि ये जो है जिस इस केस में जिसमें कि इन दोनों को जो है वो सुना गया था अर्लियर, इनकी जो जो केस थी वो सुनी जा रही थी उसके अंदर इनको सेंटेंस किया गया था, और उसमें इन दोनों को एक ही ब्रैकेट में डाला गया था, तो आज जो है कोर्ट ने कहा कि नहीं दोनों को एक ब्रैकेट में नहीं डाला जा सकता। एफआईए के प्रोसिक्यूटर जो हैं हामिद अली शाह वो आज हाजिर हुए थे इस हियरिंग में, उन्होंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट को कहा कि ये जो साइफर टेलीग्राम था ये इसके ऊपर क्लासीफाइड स्टैम्प थी और इसको जो है डिस्पोज किया गया था आफ्टर 6 months, और चाहे कोई क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट है चाहे डी क्लासीफाई है उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है 6 months के अंदर। आपको पता ही है कि नेशनल सिक्योरिटी जो काउंसिल है उसने एक डिमार्श जो है जारी किया था ऑन March 31st, और उन्होंने कहा था कि ये जो प्रोसीजर है सारे का सारा एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट का वो कंप्लीट हो गया है, और अब जो है हमको ये सारी कॉपीज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को वापस भेजनी है। तो उन्होंने आज हामिद साहब ने कहा कि ये सारी की सारी साइफर की कॉपीज जो है वापस भेज दी गई है फॉरेन मिनिस्ट्री को, एक्सेप्ट फॉर दैट जो कि इमरान खान साहब के पास है वो अभी तक फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री को नहीं मिली है। बार बार लिया सारी बहस सुनने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हियरिंग जो है उसको एडजर्न किया Wednesday May 8 तक, और उन्होंने कहा जी इसके ऊपर फर्दर डिस्कशन तब होगी। आज जनाब जो संडे को एक सऊदी डेलीगेशन जिसके बारे में हमने आपको फ्राइडे को बताया था कि वो आ रहा है ट्रेड बढ़ाने के लिए, 2-day पाक सऊदी अरेबिया इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस जो है वो आज से कमेंस हुई है इस्लामाबाद में। ये सारा कुछ उस वक्त हो रहा है जब ये 50-member हाई लेवल डेलीगेशन पाकिस्तान में इस्लामाबाद में आया हुआ है, और ये उस वक्त मुमकिन हुआ जब मीटिंग्स हुई प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच के अंदर, जिसमें कि कहा गया था कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाएगी और ट्रेड को बढ़ाया जाएगा। इस को लीड कर रहे हैं ये जो आया है हाई लेवल सऊदी डेलीगेशन, इसको सऊदी डेप्यूटी इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर इब्राहिम अल मुबारक जो है वो हेड कर रहे हैं। मुबारक साहब ने कहा जी पाकिस्तान जो है एक बड़ा इसके अंदर पोटेंशियल है इन्वेस्टमेंट का, और हम अपने ट्रेड टाइज को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हैं जिसके के अंदर सऊदी जो इन्वेस्ट कर सकता है। इसके अलावा उन्होंने तारीफ की पाकिस्तानियों की जो कि सऊदी अरेबिया की डेवलपमेंट में बड़ा उनका मेन हाथ है। एट द ओपनिंग सेशन जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के मोहम्मद औरंगजेब, उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट कमिटेड है फुली कि ये इनको फैसिलिटेट करेगी। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी आज शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि इनको पूरी तरह से सऊदी जो इन्वेस्टर्स हैं इनको फैसिलिटेट किया जाए और हर तरह की इनको फैसिलिटी दी जाए। और मोहम्मद औरंगजेब साहब ने भी कहा था कि हम वेरियस जो सेक्टर्स हैं पाकिस्तान के उसके अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो लेकर आ रहे हैं। پولیس اور انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں جی آج انہوں نے را کے دو اور ایجنٹس کو ایک جوائنٹ آپریشن میں کراچی میں پکڑا ہے اور کورنگی ایس ایس پی حسن سردار صاحب جو ہیں وہ انہوں ڈیٹیلز دے رہے تھے. انہوں نے کہا جی ان کے پاس سے دو ہینڈ گرینیڈز 9mm پسٹل اور ایمونیشن جو ہے ان سے ملی ہے اور یہ بہت سارے جو ٹارگٹس تھے ان کو پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے اور فورن ایلیمنٹس کی مدد سے ان کو ٹارگٹ کرتے تھے اور ان کو مارتے تھے. یہ جو ہیں یہ امیجز اور ساری جو انہوں نے اور انفارمیشن لی ہوتی تھی وہ